तारीख 11 जून दिन मंगलवार, कार्यक्रम दिनभर। नमस्कार। 8 दिन बाद अरुणाचल प्रदेश में मिला भारतीय वायुसेना के लापता मालवाहक विमान AN-32 का मलबा।
16 किलोमीटर नॉर्थ लीपो एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि टाटो टाउन के पास में है, वहाँ पे जहाज का मलबा मिला है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मलबा।
योगी आदित्यनाथ पर विवादित ट्वीट के मामले में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की तत्काल रिहाई के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने।
क्लियर केस है जहां मिसयूज ऑफ द आईटी एक्ट, मिसयूज ऑफ द आईपीसी और मिसयूज ऑफ द अरेस्ट पावर्स है पुलिस का। इस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पुलिस ने सुओ मोटो ही अरेस्ट किया है।
MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ब्रिटेन में गिरफ्तार। खबरें और भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। 8 दिन से लापता भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में मिला है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये मलबा 12,000 फुट ऊंचाई पर मिला है। इस विमान पर 13 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के 8 सदस्य शामिल थे। वायुसेना का कहना है कि विमान पर सवार लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हिरासत में लिए गए स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को रिहा करने के आदेश दिए हैं। प्रशांत कन्नौजिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानहानि के आरोप हैं। कन्नौजिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिनमें एक महिला ने मुख्यमंत्री के साथ चैट करने और उन्हें शादी का प्रस्ताव देने का दावा किया था। इस वीडियो के प्रसारण के बाद एक स्थानीय चैनल के 2 संपादकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के बाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि कानून के दुरुपयोग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ब्रिटेन के परोपकार आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परोपकारी संस्था ऑक्सफेम को हैती में 2010 में अपने कर्मचारियों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की सही से जांच करने की आधिकारिक चेतावनी दी है। एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हैती में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने वहां युवतियों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, जिसकी रिपोर्ट को ऑक्सफेम ने नज़रअंदाज किया था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेलेक्ट समिति में शामिल स्टीफन ट्विग आयोग की ब्रीफिंग में शामिल थे। उन्होंने कहा,
Whistleblowers need to know that they can come forward in these situations, but we also need an independent body, an international aid ombudsman.
Whistleblower को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसी परिस्थिति में आगे आ सकते हैं, लेकिन हमें एक स्वतंत्र संस्था और अंतर्राष्ट्रीय राहत लोकपाल की भी जरूरत है, ताकि संस्थाएं ऐसे मामलों से सही से निपटें, ताकि इसके पीड़ित इन घटनाओं की प्रतिक्रिया के केंद्र में रहें। बोत्सवाना में अब समलैंगिक सेक्स अपराध नहीं होगा। हाई कोर्ट ने औपनिवेशिक शासन के दौरान के कानून को खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत समलैंगिक सेक्स के लिए 7 साल तक की जेल हो सकती थी। एक मत से पारित फैसला जब सुनाया गया तो अदालत में तालियां गूंज गईं। जजों ने कहा कि समाज के किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पूरे समाज के खिलाफ भेदभाव है। एक अन्य जज ने कहा कि लोकतांत्रिक देश खुले विचारों, विविधता और सभी के लिए सहिष्णुता को अपनाते हैं। बोत्सवाना के इस फैसले पर समूचे अफ्रीका की रुचि रही। अधिकतर अफ्रीकी देशों में अभी भी समलैंगिक सेक्स अपराध है। बीते महीने ही केन्या के जजों ने समलैंगिक सेक्स को अपराध मानने वाले कानून को बरकरार रखा था। इसी साल फरवरी में अंगोला ने समलैंगिक सेक्स पर लगी कानूनी रोक हटा दी थी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। माली में एक गाँव पर हुए बर्बर हमले के बाद फरार हुए 100 से अधिक लोग जिंदा मिले हैं। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक ये लोग एक स्कूल में छिपे थे। सोबामे डा नाम के गांव में हुए हमले में कम से कम 95 लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर डोगोन नस्ली समूह के हैं। पानी और जमीन के विवाद को लेकर डोगोन और फुलानी समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़पें होती रहती हैं, लेकिन हाल के सालों में इस हिंसा में इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह इस क्षेत्र के में जिहादी समूहों की बढ़ती सक्रियता भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसके पास सूडानी सैन्य बलों के दारफूर क्षेत्र में युद्ध अपराध में शामिल रहने के सबूत हैं। समूह के मुताबिक दारफूर क्षेत्र में बीते एक साल में कम 45 गांवों को पूरी तरह नष्ट या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। समूह ने रैपिड सपोर्ट फोर्स या RSF पर हिंसा करने के आरोप लगाए हैं। इसी बल पर बीते सप्ताह राजधानी खरतूम में दर्जनों नागरिकों की हत्या करने के आरोप लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी यूनियन इसी महीने ये तय करेंगे कि दारफूर के जेबेर मर्रा से अंतर्राष्ट्रीय शांति बलों को हटाया जाए या नहीं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, पिछले 8 दिनों से भारतीय वायुसेना अपने जिस लापता मालवाहक विमान AN-32 को खोजने में जुटी थी, उसका मलबा अरुणाचल प्रदेश में मिला है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि विमान का मलबा MI-17 हेलीकॉप्टर से 12,000 फुट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में देखा गया है। पूरी जानकारी के साथ हैं असम से दिलीप शर्मा।
बीते सोमवार को असम के जोरहाट से उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के लापता हुए एक मालवाहक विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में देखा गया है। इस विमान को खोजने के लिए पिछले 8 दिनों से विशेष ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट C-130, AN-32S, MI-17 चोपर और थल सेना के कई आधुनिक हेलीकॉप्टरों से अभियान चलाया जा रहा था। इस विमान में चालक दल के साथ वायुसेना के कुल 13 लोग सवार थे। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया है कि इसमें सवार लोगों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। इस विमान ने 3 जून को दोपहर 12:25 पर अरुणाचल प्रदेश के मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन महज 35 मिनट की उड़ान के बाद ही विमान का रडार से संपर्क टूट गया। लापता इस विमान का मलबा मिलने की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय के PRO विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने BBC से कहा,
अभी तक जो हमें जानकारी मिली है पिछले 8 दिनों के सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में, तो एटलीस्ट एक पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है, सर्च पार्ट, जिसमें आज हमको ये N-32 का जो विमान है हमें वहां पे मिला है। 16 किलोमीटर नॉर्थ लीपो एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि टाटो टाउन के पास में है, वहां पे जहाज का मलबा मिला है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मलबा, जो कि हमारे Mi-17 में आज इसको स्पॉट किया है। अब हम ये देखेंगे कि अब कैसे नीचे उतरा जाए, वहाँ पे कैसे पहुँचे और मलबे के आसपास हमारे कितने सर्वाइवर्स हैं, कौन कौन है, उनको हम कैसे बचा सकते हैं और उसके आगे और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कार्रवाई इसको शुरू करेगी।
अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल वाले इलाके में खास तौर से खराब मौसम के दौरान उड़ान भरना हमेशा जोखिम भरा रहा है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई विमान हादसे हो चुके हैं। जबकि AN-32 को एक भरोसेमंद विमान माना जाता है, जिसका आम तौर पर सैन्य साजो सामान ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय वायुसेना इसे 1984 से इस्तेमाल कर रही है और अपने कई अहम अभियानों में इसका इस्तेमाल कर चुकी है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं BBC संवाददाता जुगल पुरोहित को। जुगल, आप इस पूरे प्रकरण को लंबे अरसे से देख रहे हैं और रक्षा मामलों की तमाम जानकारियां आपके पास रहती हैं। जुगल, कितना मुश्किल था इस विमान को खोजना?
देखिए, अब तक जो समझ में आ रहा है उससे तो जाहिर है कि मुश्किल था ही, क्योंकि पहली, इसके दो कारण है। पहला कारण ये कि ये एक इलाका ही ऐसा है जहां ना गांव है, ना सड़कें हैं, ना किसी तरह के कोई रास्ते हैं, घनी जंगल वाला इलाका है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये विमान के मलबे के कुछ हिस्से नजर आए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी अंदरूनी इलाके में था। और दूसरा कारण ये कि क्योंकि ये जहाज जो AN-32 था, ये वाला था जहाज, उसमें कोई अपग्रेड नहीं हुआ था, तो इसके जो लोकेशन के को ट्रांसमिट करने वाले जो साधन होते हैं वो भी काफी पुराने थे। और इसी कारण मैं समझ रहा हूँ लोगों से बात करके कि इसी कारण से इस विमान के लोकेशन पता करने में बहुत मुश्किल आई, और सिर्फ जो आंखों देखी तरीके से ढूंढा जा सकता था बस वही तरीका था और कोई तकनीकी तरीका काम नहीं आया अब तक।
बहुत सारी टीमें इसको खोजने में जुटी हुई थी, भारतीय वायुसेना की टीमें लगी हुई थी और इसरो ने भी मदद की बात कही थी। जुगल, ये बताएं कि 1984 से ये विमान जो है सेवा में है और ये अपग्रेड नहीं हुआ था, ये भी हम सब जानते हैं। आज के इस जमाने में जब हम नई सेना की बात करते हैं, अत्याधुनिक शक्ति की बात करते हैं, तो क्या कहाँ पाते हैं इसे आप?
देखिए, भारतीय वायुसेना के जो आला अफसर हैं जिनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि AN-32 बेशक पुराना जहाज तो है ही, लेकिन अब भी उसमें 5, 6 या 10 साल अपग्रेड हो ना हो उसके बेसिस पर 5 या 10 साल तक की आयु अभी भी है उस जहाज में। एयरफोर्स को जहां पर ज्यादा तकलीफ आ रही है वो ये है कि इससे भी पुराना जहाज, एक एवरो नाम का जहाज है जो आज तकरीबन 60 साल पुराना है, वो जहाज आज भी भारतीय वायुसेना में उड़ रहा है, VIP ड्यूटीज कर रहा है, और उसको बदलने का जो प्रपोजल है वो कई सालों से, मतलब UPA के दशक से चलता आ रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो भारतीय वायुसेना तो सीधा कहती है कि हम नहीं चाहते ऐसे इतने पुराने जहाज उड़ाए, लेकिन अगर सरकार और रक्षा मंत्रालय इस पे आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास और विकल्प क्या है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जुगल पुरोहित इस कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए एक ट्वीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को तत्काल जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की बेंच ने पुलिस से कहा कि प्रशांत के ट्वीट को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल में कैसे डाला जा सकता है। अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक की आजादी के साथ समझौता नहीं हो सकता, ये उसे संविधान से मिले हैं और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कन्नौजिया की रिहाई के आदेश दिए, वहीं उत्तर प्रदेश से सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को डालने पर 3 और गिरफ्तारियों की खबर है। दरअसल ये मामला क्या है और क्यों इस मामले से इतना बवाल हुआ, सुनिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
पिछले 3 दिनों में पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को शेयर करने या उन्हें अपलोड करने से जुड़े आरोप हैं। शनिवार 8 जून करीब 12:30 बजे दोपहर का वक्त था। पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर के अपने 3री मंजिल के घर से नीचे कुछ सामान खरीदने गए थे। जब वो वापस घर आए तो उनके साथ 2 और लोग थे। केंद्रीय दिल्ली में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों के पास खड़ी प्रशांत की पत्नी जगीशा ने बताया,
उन्होंने कपड़े चेंज के लिए हमको बोला, फिर उन्होंने एकदम से चले गए, धीमे आवाज में बोला क्योंकि बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। सब उन्होंने ये बोला कि हम जा रहे हैं क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था, तो बस उस चीज पे हमको लेके।
पत्रकार प्रशांत और 2 अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रशांत के विवादास्पद ट्वीट में एक वीडियो के साथ उनकी एक टिप्पणी भी थी। इस ट्वीट पर शिकायत करने वाले लखनऊ के सब इंस्पेक्टर विकास कुमार हैं।
उसमें मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मतलब कुछ वो जो एक प्रकरण चल रहा है महिला वाला, उसको लेकर उन्होंने कुछ गलत तरीके की टिप्पणी करी थी जो अशोभनीय है।
क्या उन्हें खुद इस ट्वीट पर आपत्ति थी या फिर उन्हें किसी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, इस पर विकास कुमार ने हमें उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए कहा। उधर प्रशांत कन्नौजिया की पत्नी जगीशा का आरोप है कि सादे कपड़ों में पुलिस वाले उनके घर पहुंचे, उन्होंने न उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया और न गिरफ्तारी का कारण बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख ओपी सिंह से तमाम कोशिशों के बावजूद इन आरोपों पर बात नहीं हो पाई, लेकिन मामले के जांच अधिकारी वृजेंद्र कुमार मिश्र जगीशा अरोड़ा के आरोपों से इनकार करते हैं।
सारी चीजें बता करके टीम आई थी, बाद में भी बताया गया था, हमने मैं बेवजह था, मैंने बताया।
उनका कहना है कि आपने नहीं बताया।
नहीं नहीं ऐसा, उनकी रिकॉर्डिंग है, फोन किया गया था।
किसको फोन किया था आपने?
जगीशा अरोड़ा जी।
जगीशा अरोड़ा के मतलब गिरफ्तार होने के पहले आपने फोन किया था उन्हें?
नहीं नहीं, वो तो टीम बता के आई, जब गिरफ्तार किया तो टीम ने बताया।
हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, टीम क्या यूनिफॉर्म पहन कर गई थी कि सादे कपड़े में थी सर? और उन्होंने कारण बताया था कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं?
वो सारी चीजें बता के आए थे, मुकदमा अपराध संख्या, धारा, कारण, सारी चीज।
वृजेंद्र मिश्र के मुताबिक वो खुद टीम में शामिल नहीं थे। उधर वकील अर्जुन शेवरान गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं राज्य द्वारा अपहरण बताते हैं।
क्लियर केस है जहां मिसयूज ऑफ द आईपी एक्ट, मिसयूज ऑफ द आईपीसी और मिसयूज ऑफ द अरेस्ट पावर्स है पुलिस का। इस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पुलिस ने सुओ मोटो ही अरेस्ट किया है और क्लियरली द आइडिया इज नॉट कि इनको कोर्ट में ले जाके पनिश किया जाए या केस चलाया जाए। आइडिया इज के एक चिलिंग इफेक्ट हो ताकि एक बार ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी अपना क्रिटिसिज्म वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द इंटेंट। सेक्शन 66 की वजह से ही अरेस्ट करने की पावर आई है और 66A को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है।
उधर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ी निंदा की है। एक वक्तव्य में गिल्ड ने इसे प्रेस को डराने और अभिव्यक्ति की आजादी का दम घोटने की कोशिश बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख प्रकाश सिंह के मुताबिक जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है।
जो ट्वीट था उसको ओरिजिनल में तो मैंने नहीं देखा है, पर इसको फॉरवर्ड करके भी किसी ने भेजा था उसको मैंने पढ़ा था, मैं यही कह सकता हूँ कि वो बहुत आपत्तिजनक है और इट्स वेरी प्रोवोकेटिव इनफैक्ट। और इस देश में दुर्भाग्य से फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंटरप्रेट यूं किया जा रहा है, लाइसेंस टू अब्यूज, लाइसेंस टू इंसल्ट।
प्रकाश सिंह के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है और संविधान में भी इसका जिक्र है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान की पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया है। अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी भड़काऊ भाषण के मामले में की गई है जिसमें उन्होंने लोगों को कानून को अपने हाथों में लेने की बात कही थी। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। आरोप है कि इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कराची में मीडिया कार्यालय में तोड़फोड़ की और पाकिस्तान विरोध में नारे लगाए थे। लंदन की पुलिस इस मामले में पाकिस्तान पुलिस के साथ संपर्क में थी। अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी पर और जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की लंदन में बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता सकलैन इमाम से।
देखिए, आज सुबह जो लंदन की पुलिस जो है, जिसको यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस भी कहते हैं, उन्होंने उनके घर पे छापा मारा जो कि शुमाली लंदन में वाकई एक जगह है वहाँ पे, और उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के जो बयान आया है उसमें बताया गया है कि अगस्त 2016 में अल्ताफ हुसैन साहब ने उस वक्त और उसके अलावा भी कुछ ऐसी तकरीरें की थी जिनसे उन्होंने लोगों को वायलेंस के लिए उकसाया था, तो उस वजह से लंदन पुलिस के जो काउंटर टेररिज्म जो आतंकवादी केसेस को इन्वेस्टिगेशन करता है, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनकी तकरीरें जो हैं लोगों को उकसा रही थी जिनके नतीजे में वायलेंस भी हुआ है पाकिस्तान में।
आप शायद उन्हीं भाषणों का जिक्र कर रहे हैं जिसके चलते कराची में वायलेंस हुई थी।
देखिए, इनके जो भाषण या तकरीरें थी उसमें कराची में कोई ऐसा उस वक्त कोई वायलेंस ऐसा नहीं था कि जिससे पूरा कराची जल गया हो, लेकिन ये जरूर था कि इनकी तकरीरें थी जिसमें लोग उनसे पूछ रहे थे कि अल्ताफ भाई हम क्या करें, हमें हुक्म दें, हम कुछ करें, तो उस पर उन्होंने एक किस्म का उनको इनकरेज किया, तो उस वजह से उन्होंने कुछ उस वक्त की खबरों के मुताबिक बाद में किसी मीडिया हाउस पे जाके हमला किया और उसकी कुछ इमारत को नुकसान पहुंचाया था। और उस वजह से जब ये पुलिस के इल्म में ये बात यहाँ पे भी बहुत से लोग लेकर आए थे, कंप्लेंट्स की थी पब्लिक लेवल पे जो कंप्लेंट्स होती है, और सुना ही जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मसला उठाया था कि उनकी तकरीरों की वजह से यहाँ पे वायलेंस होता है, तो इस वजह से फिर ये एक दबाव था, तो उसकी वो तहकीकात कर रहे थे 3 बरसों से।
अब आगे क्या होगा?
यहाँ का जो कानून है, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने या किसी अदालत के सामने पेश किया जाता है, मजीद तहकीक की जरूरत होगी तो उसके लिए वो रिमांड ले सकते हैं, वरना गिरफ्तारी का अमल शुरू करके एक किस्म को उस आदमी को पाबंद कर देते हैं कि अब उसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, कहीं आना जाना जो है वो पुलिस के इल्म में होना चाहिए, और शायद ये भी पाबंदी लगाई जा सकती है कि मुल्क से बाहर ना जाए।
पाकिस्तान में क्या असर होगा?
अब तक पाकिस्तान में तस्वुर था कि अल्ताफ हुसैन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन अब इनकी इस गिरफ्तारी से कम से कम ये तासुर दूर हो सकता है और ख़त्म हो सकता है कि नहीं, अगर ये ब्रिटेन के कानून की खिलाफवर्जी होगी तो यहाँ भी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा ये कि इनकी अपनी जमात जो इस वक्त तंजीमी तौर पर यानी ऑर्गेनाइजेशनली काफ़ी डिवाइडेड है, फ्रैक्चर्ड है, टूटी हुई है, लेकिन इनकी पॉपुलर लेवल पर अभी सपोर्ट कराची में है, तो फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इम्कान नहीं, लेकिन ये जरूर कि जो इनके हामी हैं वो एक मायूस भी हो सकते हैं और गम व गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं। हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इनकी गिरफ्तारी की खबर आज पाकिस्तान के बजट और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की खबर से भी बड़ी खबर है।
हमारे बीबीसी हिंदी के लिसनर को बताइए कि अल्ताफ हुसैन कितना बड़ा नाम, और अल्ताफ हुसैन के बारे में बताइए।
अल्ताफ हुसैन बुनियादी तौर पे ये उस वक्त उठे थे जो पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से मुसलमान जो हिजरत करके गए थे और उनकी ज्यादा तादाद कराची में जाके आबाद हुई थी, ये उन लोगों का एक जो एहसास महरूमी था कि हमको बहुत सारी जॉब्स नहीं मिलती हैं, एडमिशन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते हैं, खासतौर पर उर्दू स्पीकिंग लोगों को डिप्राइव किया जाता है, तो उन लोगों के ये मसाइल लेके खड़े हुए थे, और उसके बाद फिर इस पूरी कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर बन गए, और एक वक्त ऐसा रहा है कि कराची का इनका नामजद किया हुआ कैंडिडेट कहते थे कि अगर खंबा भी होगा तो उसको भी वोट पड़ेंगे और वो जीत जाएगा, तो ये कमांड इनकी, ये कंट्रोल इनका अभी तक रहा है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से जब इनकी और पाकिस्तानी फौज से बराह रास्त एक टक्कर हुई है, जब इन्होंने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तकरीरें करनी शुरू की और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो उसके बाद से फौज ने इन पर काफी पाबंदियां लगा दी, और इनकी जो जमात जो MQM है اس کو مختلف حصوں میں توڑ کے رکھ دیا ہے. تب اس وقت الطاف حسین کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کے کئی حصے بنے ہوئے ہیں. ایک الطاف حسین کے اپنے نام پہ ہے جو کہ لندن میں آپریٹ کر, ایک وہ ہے جو پاکستان میں ہے جس کو وہاں کے جو لیڈر جو ان کے نائبین جو تھے وہ اب چلا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو الطاف حسین سے الگ سمجھتے ہیں.
تو یہ تھے لندن سے بی بی سی اردو سیوا کے سنواددتا سکلین امام. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کے سنستھاپک الطاف حسین کو بھڑکاؤ بھاشڑ کے معاملے میں برٹین میں گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان کے پورو راشٹرپتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سہ پرمکھ آصف علی زرداری کو کل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا. آصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے کئی شہروں سے ورودھ پردرشن کی خبریں ہیں. سیدھے کارکرم میں شامل کرتے ہیں لاہور سے ورشٹھ پترکار عمر دراز ناگیانہ کو. عمر صاحب یہ بتائیں کہ کہاں کہاں پر اور کس طرح سے پردرشن ہو رہے ہیں.
سب سے زیادہ جو ہیں وہ تو جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے کراچی ہے ان میں زیادہ بڑے مظاہرے ہوئے. آج لاہور میں ایک بڑا مظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اس کے علاوہ کراچی جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ بھی ایک مظاہرہ ہوا. اس طرح باقی پشاور میں ایک مظاہرہ کیا گیا جہاں پہ کہ مظاہرین نے سڑک بلاک کر کے ٹائر کو آگ لگائی اور انہوں نے نعرے بازی کی. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے بھی اپنے لیڈر حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ایک پروٹیسٹ کیا. باغبان پورا کے مقام پر کافی بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا وہ بھی.
تو کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں, نیب میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور پاکستان میں ورودھ پردرشنوں کا, عام جنتا کیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے اسے؟
یہ کہنا فی الحال تھوڑا سا جلدی ہوگا کہ عام عوام جو ہیں وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, لیکن جو جو پارٹیز ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو کارکنان ہیں فی الحال تو وہی سامنے آ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پچھلے دو روز میں دو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں کو چیئرمین جو ہیں آصف زرداری جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے اسلام آباد سے. اسی طرح آج پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز شریف جو کہ شہباز شریف کے بیٹے بھی ہیں اور نواز شریف کے بھتیجے ہیں وہ بھی آج ان کو بھی نیب نے اریسٹ کر لیا. تو اس طرح کی دو بڑی گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد ان کی جو اپنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, لیکن ابھی تک یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ کیا یہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اور یہ کیا واقعی کوئی میٹیریل دباؤ جو ہے وہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے یا ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا یا نہیں. کیونکہ ابھی تک تو یہ وہ روایتی جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس قسم کا کچھ اشارہ مل رہا ہے.
بہت بہت شکریہ لاہور سے عمر دراز ناگیانہ آپ کا. اور اب کارکرم میں واپس آتے ہیں ہندوستان پر. نیتی آیوگ کے اپادھیکش راجیو کمار کو بھروسہ ہے کہ آگامی 15 جون کو ہونے والی آیوگ کی گورننگ کاؤنسل کی بیٹھک میں پشچم بنگال کی مکھیہ منتری ممتا بنرجی ضرور شامل ہوں گی. اس بیٹھک کی ادھیکشتا پردھان منتری نریندر مودی کریں گے اور سبھی راجیوں کے مکھیہ منتری بھی اس میں شامل ہوں گے. پہلے ممتا بنرجی نے بیٹھک میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا. آروپ یہ لگایا تھا کہ نیتی آیوگ کی بیٹھک صرف چرچا کرنے کا اڈا ہے جہاں کچھ بھی سارتھک نکلنے کی امید نہیں ہے. بی بی سی سنواددتا سلمان راوی نے راجیو کمار سے بات کی اور پوچھا کہ کتنی مہتوپورن بیٹھک ہوگی. یہ
بہت اہم بیٹھک ہے کیونکہ یہ ہماری اس سرکار کی پہلی بیٹھک ہوگی کہ نیتی آیوگ کی گورننگ کاؤنسل کی, اور جیسا کہ ظاہر ہے پردھان منتری نے بہت ہی جلدی اس میٹنگ کو بلایا ہے. بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے اس کی میٹنگ کریے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے شروع کیا جائے, کیونکہ چناؤ ہو گئے, چناؤ میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اب جو ہے وہ ایک کوآپریٹو فیڈرلزم کی جو بات کرتے ہیں اس کے لیے وہ ایک اہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں.
اس میں ایجنڈا کیا ہے؟
دیکھیے سب سے بڑا ایجنڈا اس میں 4-5 مدے ہیں.
جیسے میں نے سنا پانی ایک بہت بڑا,
سب سے بڑا ہے پانی پر رین ہارویسٹنگ, اور مطلب جو رین ہارویسٹنگ کا مطلب ہے کہ 80% پانی اریگیشن میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ریور واٹر بیسن ڈیولپمنٹ, واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ, انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز. دیکھیے کئی لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ یہ شاید چھٹا سال ہوگا جبکہ ہماری بارش نارمل سے تھوڑی کم ہوئی ہے. 5 سال میں ڈیفیسٹ رہی ہے, یہ کلائمیٹ چینج کو چلتے ہوا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ان سارے 5 سال میں ہمارا پروڈکشن, ایگریکلچر پروڈکشن بڑھتا رہا ہے. اور اب مگر کیونکہ ہمیں آگے میٹیگیشن سٹیپس اٹھانے ہیں, ہمیں پانی کی قلت دور کرنی ہے, ہمیں اریگیشن کے لیے پانی پیدا کرنا ہے, تو اس پر سارے راجیوں کا فوکس ہو اور اس کو ایک ماس موومنٹ کی طرح हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए वाटर पे सबसे बड़ा हमारा फोकस है।
सारे राज्यों का फोकस हुआ, लेकिन अभी हाल में ही खबर आई कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भाग नहीं लेंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये खाली टॉकिंग वर्कशॉप है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आएंगी। मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की, क्योंकि पिछले साल भी वो आई थी, मेरी पहली जो काउंसिल मीटिंग थी। और देखिए, जहाँ तक ये है कि पैसा नहीं है इसके लिए, जो है वो नीति आयोग से कोई कुछ हासिल नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये धारणा हम लोगों को बदलना पड़ेगी, क्योंकि नीति आयोग के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसके विचारों की पूंजी है, उसके नए विचारों की पूंजी है। उसकी पूंजी यह है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार मिलके मुद्दों पे बात कर सकें, और हमने भरसक कोशिश की है कि हम राज्य सरकारों के पार्टनर के रूप में उभर के आएं।
मुद्दों की बात आपने की, तो क्या ये जो 100 दिन का एजेंडा अनवेल करने जा रहे हैं जैसा सुना हमने, तो क्या रोड अहेड, वे अहेड क्या है इसमें?
नहीं देखिए, तो अब आएगा सामने, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 5 साल एक स्टेबिलाइजेशन के साल थे, एक बहुत खराब लेगेसी हमें मिली थी, हम उससे उभर कर अर्थव्यवस्था को यहाँ तक लाएं जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। अब हमें फोकस करना है ग्रोथ के ऊपर, हमें फोकस करना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निवेश के ऊपर, हमें फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत तेज़ी से। तो अगले 100 दिन में और अगले आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई गति, एक बहुत अहम दिशा मिलेगी।
जॉब के बारे में आपने कहा, कितना बड़ा चैलेंज है नीति आयोग के सामने, क्योंकि आपको वो रूपरेखा तैयार करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिले, और शायद 2 कमेटियां भी बनी हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाई गई हैं।
इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पर एक कमेटी प्रधानमंत्री ने नई बनाई है, और दूसरी बनाई है स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट पर। इससे जाहिर है कि अगर कैबिनेट की 2 नई कमेटी बनी है तो इसके आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो जो है वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। कार्यक्रम में अब बात खेल की खबरों की। ज्योतिका सिंह मुस्कुराते हुए मौजूद हैं। ज्योतिका, आज भी शुरुआत वर्ल्ड कप से
शुरुआत करना चाहूंगी, और आज के मैच पे भी पानी फिर चुका है। आईसीसी विश्व कप 2019 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाला मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गए हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाना था। बांग्लादेश ने विश्व कप में शानदार शुरुआत की थी, उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट पर 330 रन का अपना वनडे स्कोर बनाने के बाद 21 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद टीम ये लय बरकरार नहीं रख पाई तथा उसे न्यूजीलैंड से 2 विकेट और मेजबान इंग्लैंड से 106 रन से हार झेलनी पड़ी। अब हॉकी की तरफ चलती हूँ। भारतीय टीम ने FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। उसने सोमवार को अपने आखिरी पूल मैच में उज्बेकिस्तान को 10-0 से करारी शिकस्त देकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। मेजबान भारत के लिए आकाशदीप सिंह ने 3 और वरुण कुमार तथा मनदीप सिंह ने 2-2 गोल किए। अमित रोहित दास, नीलकांत शर्मा, गुरसाहिबजीत सिंह ने 1-1 गोल दागे। क्या कहना है भारतीय टीम के बारे में सेमीफाइनल्स के मैच को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ खेल पत्रकार हरबिंदर सिंह का, आइए जानते हैं।
देखिए, अभी जो सेमीफाइनल होगा हमारा वो जापान और रशिया के विनर से होगा। तो अभी एक्चुअली क्या है कि इन्होंने इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है। जैसे जो अपने अपने ग्रुप में टॉप कर गई टीम, वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गई। जो हमारे ग्रुप की सेकंड है, दूसरे ग्रुप के थर्ड से खेल रही है, और उनके थर्ड हमारे सेकंड से खेल, तो इनमें से जो जीतेंगे वो 2 टीम क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। तो अब जापान का और जो रशिया का मैच होगा उसके विनर से इंडिया खेलेगा सेमीफाइनल। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतनी इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, किसी वक्त भी कोई टीम अपसेट हो सकती है।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार हरबिंदर सिंह। वहीं शुक्रवार को होने वाले सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान और पोलैंड के बीच होने वाले क्रॉसओवर मैच के विजेता से होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिका सिंह। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। 8 दिन से लापता भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में मिला है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हिरासत में लिए गए स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करने के आदेश दिए हैं। प्रशांत कनौजिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानहानि के आरोप हैं। ब्रिटेन के परोपकार आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परोपकारी संस्था ऑक्सफेम को हैती में 2010 में अपने कर्मचारियों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की सही से जाँच करने की आधिकारिक चेतावनी दी है। बोत्सवाना में अब समलैंगिक सेक्स अपराध नहीं होगा। हाईकोर्ट ने औपनिवेशिक शासन के दौरान के कानून को खत्म कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। हम विदा ले रहे हैं लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।